रस सिद्धांत और उसका महत्व। रस शब्द भारतीय संस्कृति और साहित्य के चरम विकास से संबंधित है। भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व के लिए होता है। खाद्य पदार्थों और फलों के क्षेत्रों में रस मधुरतम तरल पदार्थ का द्योतक है। संगीत के क्षेत्र में कर्णेंद्रिय द्वारा प्राप्त आनंद का नाम रस है। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्राणदायिनी औषधियों को रस कहा जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में स्वयं परमात्मा को ही रस या रस को ही परमात्मा घोषित किया गया है। रसो वैसा अर्थात रस ही परमात्मा है। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंदानुभूति को ही रस की संज्ञा दी गई है। अस्तु, काव्यानंद ही रस है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया है। भरत मुनि का समय अनुमानतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के निकट माना जाता है। भारत के पूर्व भी रस सिद्धांत के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। स्वयं भरत ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की ओर संकेत करते हुए लिखा है, एते हृष्टो रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना। फिर भी पूर्ववर्ती ग्रंथ अनुपलब्ध होने के कारण भरत को ही आदि आचार्य माना गया है। भरत मुनि के कार्य को अनेक पर्वर्ती आचार्यों भट्ट लुल्लट, शंखुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, भोजराज, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि ने आगे बढ़ाया। आगे चलकर हिंदी के कवियों और आचार्यों ने भी रस सिद्धांत का महत्व स्वीकार किया है। आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। वस्तुतः लगभग 20 शताब्दियों से भारत में रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रूप से रही है। यद्यपि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि संप्रदायों के प्रवर्तकों ने रस के विरोध में नए नए संप्रदायों की स्थापना करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता न मिली और अंत में उन्हें भी किसी न किसी रूप में रस का महत्व स्वीकार करना पड़ा। भावों का वर्गीकरण। रस सिद्धांत के समर्थक काव्य का लक्ष्य पाठक को आनंदानुभूति प्रदान करना स्वीकार करते हैं। इस काव्य जन्य आनंद का ही दूसरा नाम रस है। यह आनंदानुभूति या रसानुभूति पाठक की भावनाओं के उद्वेलन के द्वारा संपन्न होती है। अतः काव्य में भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह पाठक की भावनाओं का उद्वेलन कर सके। यह क्षमता तभी आती है जबकि काव्य में विभिन्न भावों, भावनाओं एवं उनसे संबंधित तत्वों का चित्रण सुचारू रूप से हुआ हो। अतः रस सिद्धांत एक ओर तो काव्य के सर्वप्रमुख तत्व के रूप में भाव को स्वीकार करता है तथा दूसरी ओर वह भावों के विभिन्न रूपों और उनके विभिन्न अंगों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। रस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम भावों का दो रूपों में वर्गीकरण किया जाता है, एक स्थायी भाव और दो संचारी भाव। स्थायी भाव धीरे धीरे विकसित होता है, दीर्घकाल तक हृदय में स्थित रहता है, जबकि संचारी भाव विद्युत की भांति एकाएक प्रकाशित होकर कुछ ही क्षणों में अनंतर लुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रेम, घृणा, उत्साह आदि स्थायी भाव हैं, जबकि रोष, हर्ष, भय आदि परिस्थितियों के अनुसार संचारी रूप में प्रकट होते हैं। भावों का यह वर्गीकरण आधुनिक मनोविज्ञान के भी सर्वथा अनुकूल सिद्ध होता है। मनोविज्ञान के अनुसार भी भावों के दो रूप हैं, एक इमोशन और दो सेंटिमेंट। ये दोनों क्रमशः हमारे संचारी भाव और अस्थायी भाव के ही पर्यायवाची हैं। इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि इमोशन भावानुभव की प्रवृत्ति मात्र, या यूं कहिए कि भाव की उत्तेजित अथवा अवस्था मात्र, इमोशन इज अ मूव्ड और स्टायर्ड अप स्टेट ऑफ फीलिंग है, जबकि सेंटिमेंट वह भावात्मक प्रवृत्ति है जो किसी आलंबन विशेष से संबद्ध होकर व्यवस्थित ढंग से विकसित होती है। ए सेंटिमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ इमोशनल डिस्पोजिशंस सेंटर्ड अबाउट द आइडिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट, मैकडुगल। श्री मैकडुगल महोदय ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए लिखा है, उद्धरण चिन्ह, प्रत्येक सेंटिमेंट के पीछे उसके उद्भव का पूरा इतिहास होता है। यह धीरे धीरे विकसित होता हुआ अधिक गंभीर और शक्तिशाली होता जाता है। जब कोई इमोशन विशेष बार बार आलंबन विशेष के कारण उद्दीप्त होता रहता है तो वह दृढ़ और जटिल होता है और उसकी मूल अवस्था निर्मित हो जाती है। सेंटिमेंट के उदाहरण प्रेम और घृणा है, उद्धरण चिन्ह बंद। तीन उनके हैं, हमारे आचार्यों ने निर्मित स्थायी भाव और संचारी भाव का अंतर बताते हुए इसी से मिलती जुलती बात कही है। रस गंगाधर कार ने लिखा है, उद्धरण चिन्ह, स्थायी भाव चित्त में चिरकाल तक वासना रूप में स्थित रहता हुआ आलंबन से संबद्ध रहता है। वह विरोधी संचारी भावों से विच्छिन्न नहीं होता तथा आश्रय के हृदय में जीवन के दीर्घ भाग तक स्थित रहता है, जैसे प्रेम नामक चित्तवृत्ति। उद्धरण चिन्ह बंद। डॉक्टर नगेंद्र ने सेंटिमेंट का अनुवाद मनोवृत्ति करते हुए रस सिद्धांत के स्थायी भाव से सेंटिमेंट या मनोवृत्ति में सूक्ष्म अंतर बताया है। एक, मनोवृत्ति एक व्याप्त मनःस्थिति मात्र है जिसके समग्र रूप का अनुभव कभी नहीं हो सकता। मनोवृत्ति के संचारी का ही आस्वादन हो सकता है, स्वयं मनोवृत्ति का नहीं, परंतु स्थायी भाव के विषय में यह बात नहीं। दो, मनोवृत्ति सदैव ही मनोविकार की आवृत्ति बन जाती है, परंतु स्थायी भाव के विषय में यह सत्य नहीं है। हर्ष की आवृत्ति करते रहिए पर वह रति नहीं बन जाएगा। तीन, मनोवृत्ति सदैव विचार मूलक है, परंतु स्थायी भाव विचार मूलक नहीं, प्रवृत्ति मूलक है। डॉक्टर नगेंद्र के निष्कर्ष हमें स्वीकार्य प्रतीत नहीं होते। एक तो उन्होंने सेंटिमेंट का अनुवाद मनोवृत्ति करके उसके रूप के संबंध में भ्रांति उत्पन्न कर दी है। सेंटिमेंट हमारे भावना शब्द का समानार्थक है। मनोवृत्ति सामान्य मानसिक प्रवृत्ति मात्र होती है, उसमें भावनात्मकता कम होती है, जबकि भावना में भावात्मकता का अंश अधिक होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सेंटिमेंट की जो व्याख्या की है वह भावना से साम्य रखती है। दूसरे, डॉक्टर नगेंद्र ने जो विशेषताएं सेंटिमेंट की बताई हैं वे सब स्थायी भाव में ही मिलती हैं, तथा जो न्यूनताएं स्थायी भाव में ढूंढी गई हैं वे सेंटिमेंट में ही विद्यमान है। हर्ष की आवृत्ति करते रहने से यदि रति स्थायी भाव का विकास नहीं होता तो यह भी सत्य है कि हर्ष की आवृत्ति से प्रेम सेंटिमेंट का ही विकास नहीं होता। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि रस सिद्धांत के आचार्यों द्वारा स्थायी और संचारी का वर्गीकरण आधुनिक मनोविज्ञान के भी अनुकूल है। रस के विभिन्न अवयव। भावोद्वेलन के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना करते हुए भरत मुनि ने भावनाओं से संबंधित मुख्यतः तीन अवयवों, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की चर्चा की है। विभाव क्या है? वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव के भी दो भेद माने गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। मानव हृदय में भावनाओं का प्रस्फुटन किसी बाह्य वस्तु, दृश्य या किसी परिस्थिति विशेष की कल्पना द्वारा ही होता है। इसी प्रमुख कारण को आलंबन कहते हैं। जैसे सिंह को देखकर हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, अतः यहाँ सिंह आलंबन है। किंतु बाह्य कारण का प्रभाव ही मनुष्य पर परिस्थितियों के अनुसार ही पड़ता है। यदि हम सिंह को पिंजरे में बंद देखते हैं या हम हवाई जहाज में बैठे हुए ऊपर से सिंह को देखते हैं तो हमारे हृदय में भय का संचार नहीं होता। अतः भावोद्दीपन के लिए परिस्थितियों की अनुकूलता भी अपेक्षित है। इसी को उद्दीपन कहा गया है। आलंबन यदि आग लगाने वाला अंगारा है तो उद्दीपन अनुकूल हवा की भांति उसे बढ़ाने में योग देता है। जिस प्रकार वर्षा के बीच आग बुझ जाती है, ठीक वैसे ही उद्दीपन की प्रतिकूलता में आलंबन का प्रभाव भी नष्ट हो सकता है। शमशान भूमि में रमणी की मनोरम छवि को देखकर भी रति का विकास नहीं होता। जिस व्यक्ति के हृदय में आलंबन और उद्दीपन के प्रभाव से भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहा जाता है। हृदयगत भावों के उद्वेलन से आश्रय की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, जैसे क्रोध में नेत्रों का लाल हो जाना, शोक में चीखना, आंसू बहाना आदि। इस परिवर्तन के द्योतक चिन्हों को अनुभव की संज्ञा दी गई है। हृदयस्थ भावों की व्यंजना अनुभवों के माध्यमों से होती है। भावनाओं का रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिनका वर्णन काव्य में नहीं किया जा सकता। अतः अनुभवों के चित्रण के द्वारा ही भाव की व्यंजना की जाती है। अतः काव्य में अनुभवों की व्यंजना आवश्यक मानी गई है। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का भी संचार होता रहता है। उदाहरण के लिए प्रेम स्थायी भाव के क्षेत्र में प्रिय के मिलन पर हर्ष, उसके वियोग पर दुख, उसकी उपेक्षा पर क्षोभ, अहित की आशंका पर चिंता आदि भावों की अनुभूति होती है। इन्हें संचारी कहा जाता है। संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं, किंतु यदि उनकी आयोजना प्रतिकूल रूप में हो तो ये बाधक भी सिद्ध हो सकते हैं। काव्य में स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए उसके अनुकूल संचारियों की ही आयोजना की जाती है। इस प्रकार स्थायी भाव आश्रय के हृदय में आलंबन के द्वारा उत्तेजित होकर, उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होकर, संचारी भावों से पुष्ट होता हुआ अनुभवों के माध्यम से व्यक्त होता है। जब काव्यगत स्थायी भाव की अनुभूति पाठक को होती है तो वह रसानुभूति या रस निष्पत्ति कहलाती है। रस के भेद या रस संख्या। वैसे तो रस का सामान्य लक्षण एक ही माना गया है, उसका रसात्मक या आह्लादक होना। फिर भी प्रत्येक रस स्वरूप उसके स्थायी भाव की प्रकृति के अनुरूप होता है। अतः जितने प्रकार के स्थायी भाव हैं उतने ही रस के भेद किए गए हैं। आचार्य भरत मुनि ने निम्नांकित स्थायी भावों के आधार पर क्रमशः 8 रसों को मान्यता दी थी। 1 रति श्रृंगार, 2 हास हास्य, 3 शोक करुण, 4 उत्साह वीर, 5 क्रोध रौद्र, 6 भय भयानक, 7 जुगुप्सा विभत्स, 8 विस्मय अद्भुत। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही इनके अतिरिक्त एक और रस की भी चर्चा मिलती है, जिसे शांत रस कहा गया है। इसका स्थायी भाव शम या शांति हो सकती है। आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए इसका स्थायी भाव तत्व ज्ञान को स्वीकार किया है। कतिपय अन्य आचार्यों ने धृति, निर्वेद आदि को भी शांत रस के स्थायी भाव के रूप में प्रस्तावित किया है। वस्तुतः शांत रस के स्थायी भाव के संबंध में आचार्यों में मतभेद है, फिर भी उसे नवे रस के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वात्सल्य स्थायी भाव पर आधारित वात्सल्य रस को सख्य भाव या मैत्री भाव पर आधारित सख्य रस को तथा श्रद्धा या भक्ति के स्थायी भाव पर आधारित भक्ति रस को भी स्थापित करने का प्रयास विभिन्न आचार्यों द्वारा हुआ है। यदि इन सभी रसों को स्वीकार कर लिया जाए तो रस भेदों की संख्या 12 तक पहुँच जाती है। रसशास्त्र के इतिहास में जहाँ एक ओर समय समय पर रसों की संख्या में अभिवृद्धि करने का प्रयास होता रहा है, वहीं दूसरी ओर उसे अत्यधिक न्यून कर देने की भी चेष्टा की गई है। उदाहरण के लिए भरत मुनि ने करुण को ही एकमात्र रस माना है, तो भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज घोषित करते हुए उसके अंतर्गत अन्य रसों को समाविष्ट करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इनके अतिरिक्त अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वोपरि मानते हुए सभी रसों की परिणति इसी में मानी है। आधुनिक युग में बौद्धिकता की दृष्टि से काव्य एवं साहित्य में भाव तत्व की अपेक्षा बुद्धि तत्व की प्रमुखता है, अतः प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने बौद्धिक रस की स्थापना की है। बौद्धिक रस के संबंध में द्रष्टव्य रस सिद्धांत का पुनर्विचार, पृष्ठ 331, जिसकी चर्चा अन्यत्र की जाएगी। रस सिद्धांत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। रस सिद्धांत मूलतः भावों पर आधारित है, अतः आधुनिक दृष्टिकोण से इसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही विचार किया जाना आवश्यक है। डॉक्टर राकेश गुप्त ने अपने शोध प्रबंध में रस सिद्धांत को आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से असंगत एवं अवैज्ञानिक सिद्ध किया है। डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने भी रस की मनोवैज्ञानिकता पर विचार किया है, किंतु उन्होंने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने अपने ग्रंथ रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से रस सिद्धांत का विवेचन करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि रस सिद्धांत के आचार्यों द्वारा उल्लिखित स्थायी भाव मुख्यतः आधुनिक मनोविज्ञान की सहज प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स, भावनाओं, सेंटिमेंट्स एवं मूल भावों, प्राइमरी इमोशंस के समन्वित रूप का सूचक है। इसी प्रकार संचारी भावों के अंतर्गत आधुनिक मनोविज्ञान की मनोदशाओं, मूड्स, व्युत्पन्न भावों, डेराइव्ड इमोशंस एवं अनुभूति, फीलिंग्स आदि का मिश्रित रूप है। स्थायी भाव के अंतर्गत परिगणित मनःस्थितियाँ संचारी भावों की मनःस्थितियों से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर एवं स्थायी हैं, अतः स्थायी एवं संचारी का भेद संगत है। स्थायी भाव की अभिव्यक्ति के लिए विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव का अस्तित्व आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि कतिपय पारिभाषिक शब्दावलियों को छोड़कर रस सिद्धांत की आधारभूत स्थापनाएं आधुनिक मनोविज्ञान के सर्वथा अनुरूप हैं, अतः इसे आधुनिक मनोविज्ञान के प्रतिकूल मानना उचित नहीं है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र। यद्यपि रस सिद्धांत मूलतः एक भारतीय सिद्धांत है, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में भी एक ऐसे सिद्धांत का अस्तित्व उपलब्ध है जिसकी स्थापनाएं भारतीय रस सिद्धांत के बहुत कुछ अनुरूप हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ रसवादी आचार्यों ने काव्य या नाटक का प्रमुख तत्व भाव ही माना है तथा उसी की उद्दीप्ति या अभिव्यक्ति से पाठक को आनंद प्रदान करना काव्य का लक्ष्य माना है, उसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान बर्क 18वीं शताब्दी, हरमन लॉट्ज, जॉर्ज संटाइना, कॉलिंगवुड, ई एफ कैरेट आदि ने कला और साहित्य का मूल लक्ष्य भावों के चित्रण या उनकी अभिव्यक्ति द्वारा सामाजिक को आनंद प्रदान करना स्वीकार किया है। इनमें से कतिपय विद्वानों ने भावों का वर्गीकरण स्थायी भाव एवं रस का अंतर साधारणीकरण या निर्वैयक्तिकता, तादात्म्य या समानुभूति जैसे तत्वों की भी स्थापना की है, जो कि भारतीय रस सिद्धांत की अवधारणाओं के सर्वथा अनुरूप है। अस्तु, भले ही पाश्चात्य काव्य चिंतकों एवं कला मीमांसकों ने सिद्धांत को रस सिद्धांत की संज्ञा न देकर भाव सिद्धांत, भाव अभिव्यक्ति सिद्धांत या भाव संप्रेषण सिद्धांत आदि के नाम से पुकारा हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी स्थापनाएं भारतीय रस सिद्धांत से इतना अधिक मेल खाती हैं कि यदि हम उन सिद्धांतों को रस सिद्धांत की भी संज्ञा दे दें तो अनुचित नहीं होगा। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में हमने इन भारतीय एवं पाश्चात्य रस चिंतकों की अवधारणा पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए रस सिद्धांत को एक अत्यंत व्यापक एवं सार्वभौम यूनिवर्सल रूप प्रदान किया है। यह दूसरी बात है कि हिंदी के दिग्गज विद्वानों को अब इतना अवकाश नहीं है कि वे इस प्रकार के किसी ही मौलिक प्रयास का अध्ययन, विवेचन एवं मूल्यांकन कर सकें। रस सिद्धांत आधुनिक दृष्टि से। रस सिद्धांत के विरोधी प्रायः आक्षेप लगाते हैं कि सिद्धांत की स्थापना मध्यकाल में हुई थी, जबकि जीवन में भावात्मकता या रागात्मकता को प्रमुख स्थान प्राप्त था, जबकि आज का युग बौद्धिकता का है। दूसरे रस सिद्धांत के आचार्यों ने अपनी धारणाओं को तद्युगीन दार्शनिक सिद्धांतों पर प्रतिष्ठित किया है, जबकि आज दर्शन की अपेक्षा विज्ञान या मनोविज्ञान का अधिक महत्व है। तीसरे, रस सिद्धांत की स्थापना नाटक एवं प्रबंध काव्य की दृष्टि से की गई थी, जबकि आज का युग गीति और मुक्तक का है। अस्तु, उपर्युक्त कारणों से रस सिद्धांत आधुनिक युग के लिए अमान्य एवं अनुपयोगी सिद्ध हो गया है। हमारे विचार से यह बात ऐसे सिद्धांतों पर ही लागू हो सकती है जो कि देश काल की सीमित अवधारणाओं पर आधारित हो, जबकि रस सिद्धांत के आधारभूत तत्व शाश्वत हैं, अतः वे देश काल की सीमाओं से मुक्त कहे जा सकते हैं। कविता चाहे वैदिक युग की हो अथवा आधुनिक युग की हो, उसमें रागात्मकता एवं आह्लादकता का सन्निवेश सर्वदा रहेगा, अन्यथा वह कविता न रहकर अकविता बन जाएगी। रस सिद्धांत की व्यापकता एवं सार्वभौमिकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण यह भी है कि वह न केवल भारतीय काव्यशास्त्र में अपितु पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में ही उपलब्ध है। अस्तु, रस सिद्धांत की आधुनिक युग में ही उपयोगिता है, इसमें तो हमें कोई संदेह नहीं। इतना अवश्य है कि आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप उसके बाह्य स्वरूप में या उसकी पारिभाषिक शब्दावली में थोड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। उसके आधारभूत एवं शाश्वत तत्वों को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे कि वह आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में दो प्रकार के प्रयास किए गए हैं। एक तो यह कि रस की परंपरागत शब्दावली के मूल अर्थ को सुरक्षित रखते हुए उसे नए शब्दों में प्रस्तुत किया गया है जिससे कि वे आधुनिक युगीन पाठक के लिए सहज बोधगम्य हो सके। दूसरे, आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुरूप उसमें भाव प्रधान ही नहीं विचार प्रधान काव्य या साहित्य की व्याख्या की दृष्टि से भी संशोधन परिवर्धन किया गया है। आगे इन दोनों प्रयासों पर क्रमशः प्रकाश डाला जाएगा। आधुनिक दृष्टि से रस एवं उसके विभिन्न अवयवों या घटक तत्वों के परंपरागत रूप का विवेचन विश्लेषण करते हुए तथा उनकी मूल प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए उन्हें सामान्य या व्यापक शब्दावली में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। एक, रस यानी काव्यानुभूति कलानुभूति। दो, स्थायी भाव अर्थात केंद्रीय तत्व या प्रतिपाद्य। तीन, विभाव यानी संदर्भ। क, आलंबन यानी प्रेरक तत्व। ख, उद्दीपन यानी परिवेश। चार, अनुभाव यानी माध्यम शैली। पाँच, संचारी भाव यानी सहयोगी तत्व, विचार अनुभूति कल्पना आदि। द्रष्टव्य रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, पृष्ठ संख्या 375। वस्तुतः रस सिद्धांत के संबंध में आधुनिक युग के विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं चिंतकों में जो अस्पष्टता एवं दुरूहता है, उसका मूल कारण रस की परंपरागत शब्दावली ही है। यदि हम उसके स्थान पर क्रमशः रचना के केंद्रीय तत्व, प्रतिपाद्य, संवेदना या अनुभूति, प्रेरक तत्व, परिवेश, वातावरण एवं माध्यम शैली जैसे शब्दों का व्यवहार करें तो अत्यंत सुबोध एवं सहज गम्य प्रतीत होगा। दूसरे शब्दावली से यह भी स्पष्ट है कि उसका केंद्रीय तत्व प्रतिपाद्य कोई स्थायी तत्व ही हो यह आवश्यक नहीं है। रचयिता या साहित्यकार किसी भी विचार, समस्या या सिद्धांत विशेष को भी केंद्रीय तत्व के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है। इतना अवश्य है कि केंद्रीय तत्व की काव्यात्मक या कलात्मक परिणति के लिए उसे तत्संबंधी संवेदना या अनुभूति, प्रेरक तत्व, परिवेश एवं माध्यम शैली से समन्वित करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह रचना केवल विचारों का प्रतिपादन बनकर रह जाएगी। कलात्मक सौंदर्य का आविर्भाव उसमें नहीं हो सकेगा। अस्तु, इस नई शब्दावली के आधार पर किसी भी साहित्यिक रचना का विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन सम्यक रूप में किया जा सकता है। रस सिद्धांत के आधुनिकीकरण के लिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास यह है कि रस की परंपरागत संख्याओं में विस्तार करते हुए बौद्धिक रस की स्थापना करना, जिससे कि उसके आधार पर ऐसी रचनाओं की व्याख्या की जा सके जिनमें भाव की अपेक्षा विचार या समस्या की प्रमुखता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी रचना भावों या अनुभूतियों की सर्वथा उपेक्षा कर सकती है। वस्तुतः बौद्धिक रस में ऐसी ही रचनाओं को स्थान दिया जा सकता है जिसमें भाव या अनुभूतियाँ विचार की तुलना में गौण हैं, या जो विचार विशेष या तत्व विशेष के व्यंजना के लिए साधन रूप में प्रयुक्त हुई हैं। अस्तु, बौद्धिक रस की स्थापना से इस आक्षेप का निराकरण सम्यक रूप में हो जाता है कि रस सिद्धांत आधुनिक युग के विचार प्रधान साहित्य के लिए अनुपयोगी है। इस रस की विस्तृत विवेचना हम आगे अलग अध्याय में कर रहे हैं, अतः यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि रस सिद्धांत में ऐसी क्षमताएं अंतर्निहित हैं जिन्हें विकसित करके एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जा सकती है। वस्तुतः युग और देश के अनुसार समीक्षा के मानदंड बदलते रहते हैं, किंतु रस सिद्धांत एक ऐसा मानदंड है जो सभी युगों और सभी देशों की काव्य रचनाओं की समीक्षा का आधार सफलतापूर्वक बन सकता है, क्योंकि वह ऐसी मानवीय संवेदनाओं एवं भावानुभूतियों पर आधारित है जो कि शाश्वत है। अस्तु, जब तक साहित्य का संबंध मानवीय संवेदनाओं से रहेगा, तब तक रस सिद्धांत का ही महत्व अक्षुण्ण रहेगा। इस प्रकार रस सिद्धांत और उसका महत्व शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।